ஓம் தியாயே நித்யம் மகேசம் ரஜத கிரி நிபம் சாரு சந்திராவதன்சம் ரத்னா கல்போஜ்வலாங்கம் பரசும் ரிகவரா வேதிஹஸ்தம் பிரசன்னம் பத்மாசீனம் சமந்தாத் ஸ்துதம் அமரகணிர் வ்யாக்ரக்ருத்யம் வசானம் விஸ்வாத்யம் விஸ்வபந்த்யம் நிகில பயஹரம் பஞ்சவக்த்ரம் த்ரிநேத்ரம் நாராயணம் பத்மபவம் வசிஷ்டம் சக்திம் ச தத் புத்ர பராசரம் ச வ்யாஸம் சுகம் கௌட பதம் மஹந்தம் கோவிந்த யோகீந்திர மதாஸ்ய சிஷ்யம் ஸ்ரீ சங்கராச்சார்ய மதாஸ்ய பத்ம பாதம் ச ஹஸ்தமலகம் ச சிஷ்யம் தந்தோடகம் பாரதி ககார மன்யான் அஸ்மத் குரும் சந்ததமானதோஸ்மி விசுத்த ஞான தேஹாய த்ரிவேதி திவ்ய சக்ஷுசே ஸ்ரேய ப்ராப்தி நிமித்தாய நம சோமார்த தாரிணே ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. சிவாய நம ஓம் சிவாய நம ஓம் சிவாய நம ஓம் நம சிவாய சிவாய நம ஓம் சிவாய நம ஓம் நம சிவாய சிவாய நம ஓம் சிவாய நம ஓம் சிவாய நம ஓம் நம சிவாய சிவாய நம ஓம் சிவாய நம ஓம் சிவாய நம ஓம் நம சிவாய ஹராய நம ஓம் ஹராய நம ஓம் ஹராய நம ஓம் நமோ ஹராய ஹராய நம ஓம் ஹராய நம ஓம் நமோ ஹராய ஹராய நம ஓம் ஹராய நம ஓம் ஹராய நம ஓம் நமோ ஹராய ஹராய நம ஓம் ஹராய நம ஓம் நமோ ஹராய பவாய நம ஓம் பவாய நம ஓம் பவாய நம ஓம் நமோ பவாய பவாய நம ஓம் பவாய நம ஓம் நமோ பவாய பவாய நம ஓம் பவாய நம ஓம் பவாய நம ஓம் நமோ பவாய பவாய நம ஓம் பவாய நம ஓம் நமோ பவாய मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय भज मन शिव शिव निरन्तरम् जप मन शिव शिव निरन्तरम् भज मन शिव शिव जप मन शिव शिव निरन्तरम् रट मन शिव शिव निरन्तरम् स्मर मन शिव शिव निरन्तरम् रट मन शिव शिव स्मर मन शिव शिव निरन्तरम् ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ॐ ॐ ॐ आदिगुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित शिव भक्ति से संबंधित स्तोत्र शिवानंद लहरी के आधार पर सायंकालीन संत प्रवचन जो प्रेमपुरी आश्रम आयोजित है इसका आज 9वां दिन 10 दिन का यह कार्यक्रम कल अंतिम है। अभ्यास के लिए श्लोक नंबर है 64
वक्षस्ताडनमन्तकस्य कठिना पस्मार सम्मर्दनम् भोभृत् पर्यटनम् नमत् सुरशिरः कोटीर संघर्षणम् कर्मेदम् मृदुलस्य तावक पद द्वन्द्वस्य किम्बोचितम् द्वन्द्वस्य किम्बोचितम् क्या है अच्छा पाठ भेद है ठीक है मच्चेतो मणिपादुका विहरणम्। शंभो सदांगी कुरु। वक्षस्ताडन संकया विचलितो वैवस्वतो निर्जरा कोटिरोज्ज्वलरत्नदीपकलिका नीराजनं कुर्वते। दृष्ट्वा मुक्तिवधूस्तनोति निभृता श्लेषं भवानीपते यच्चेतस्तव पादपद्मभजनम्। तस्येह किं दुर्लभम्। क्रीडार्थं सृजसि प्रपञ्चमखिलम्। क्रीडा मृगास्ते जना यत्कर्माचरितं मया च भवत। प्रीत्यै भवत्येव तत् शम्भो स्वस्य कुतूहलस्य करणम्। मच्चेष्टितं निश्चितं तस्मान्मामकरक्षणं पशुपते। कर्तव्यमेव त्वया बहुविधपरितोषः बाष्पुलकाञ्चितचारुभोगभूमिम् चिरपदकाङ्क्षिसेव्यमानाम् परमसदाशिवभावनां प्रपद्ये। अमितमुदमृतं मुहुर्दुहन्तीं विमलभवत्पदगोष्ठमावसन्तीं सदय पशुपते सुपुण्यपाकाम्। मम परिपालय भक्तिधेनुमेकाम्। जडता पशुता कलंकिता कुटिलचरत्वं च नास्ति मयि देव। अस्ति यदि राजमौले भवदाभरणस्य नास्मि किं पात्रम्। वक्षस्ताढनमन्तकस्य कठिन पस्मार सम्मर्दनम् भूभृत्पर्यटनम् नमस्सुरशिर। कोटीरसङ्घर्षणम् కర్మేదం మృదులస్య తావక పద ద్వంద్వస్య కిం వోచితం ద్వంద్వస్య గౌరీపతే మచ్చేతో మణిపాదుకా విహరణం శంభో సదాంగి కురు.
ఆదిగురు శంకరాచార్యజీ భగవాన్ శివ ద్వారా కియే హుయే కర్మ ప్రతి ఏ సంకేత్ కర్తే హై. వాస్తవ మే ఆప్ బహుత్ కఠిన కామ్ కర్తే హో. ఆప్కే లియే కుచ్ మదద్ చాహియే. బహుత్ మదద్ తో మే క్యా కర్ సక్తా హూ, మే జీవ్ హూ. ఏక్ కామ్, ఏక్ మదద్, ఏక్ సహయోగ్ మే కర్ సక్తా హూ జో ఆప్కే లియే బహుత్ ఉపకారీ హోగా.
వక్షస్తాడనమంత కస్య కఠినా.
సంసార్ మే కోయి భీ న కర్ సకే వో కామ్ ఆప్ కర్తే హో. సబ్సే కఠిన కోయి ఇన్సాన్ జగత్ మే పైదా హువా, కఠోర్ కఠిన హై నా, కఠిన కహో యా కఠోర్ కహో. గుజరాతీ లోగ్ కఠణ బోల్తే హై, కఠిన కహో, కఠోర్ కహో, కఠణ కహో. బాత్ ఏక్ హీ చీజ్ హై. సంసార్ మే కఠోర్ కోయి వ్యక్తి పైదా హువా హై తో ఉస్కా నామ్ హై యమరాజ్ హై నా. ఉస్కే హృదయ మే, ఉస్కే జీవన్ మే దయా కరుణా జరా భీ నహీ హై. సభీ లోగ్ యహీ కహతే హై కి బహుత్ కఠోర్ హై. किसी का पति मर जाता है तो पत्नी कहती है कि कैसा कठोर है. किसी का बेटा मर जाता है तो मां कहती है कि यमराज कैसा कठोर है. किसी का बाप, किसी की मां मर जाती है तो कहते हैं लोग यमराज कैसा कठोर है, कठोर दिल वाला है, है ना. इतने से छोटे से बच्चों को अनाथ छोड़कर जानते हुए भी हैं उन बच्चों को अनाथ बनाकर उसकी मां को ले गया, कैसा कठोर दिल वाला है, कहते हैं कि नहीं. इसलिए सबसे कठोर व्यक्ति है तो यमराज है भाई. और यही कारण है कि आज तक उसके छाती में किसी ने लात मारने की हिम्मत नहीं की है. की है किसी ने साहस किया उसके छाती पर लात मारने का, और वो काम आपने किया है. किसने? शिवजी ने कहा किया है भाई. विचार करो कि उनके चरण में कितना कष्ट हुआ होगा.
हाँ,
हम लोग बचपन में ये दिवाली के बाद भैया दूज आता है ना, भैया दूज के दिन बहन भाई को टीका लगाती है, बहन अपने भाई को टीका लगाती है, उसी को भैया दूज कहते हैं। और पहाड़ में ये चलन है, ये संस्कृति है कि टिक्का लगाने से पहले अच्छी तरह नहा लो, फिर सरसों का तेल शरीर में लगाओ, फिर उसके बाद टिक्का लगाओ। टिक्का लगाने के बाद खाने के लिए कई चीज बहन देती है, उनमें से एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो अनिवार्य देना ही पड़ता है उस दिन, वह है अखरोट, समझे ने? उसका नाम है अखरोट। अखरोट तो जानते हो ना? अब वो अखरोट भी आजकल जो आपके यहां आता है ना, वो तो बहुत सॉफ्ट अखरोट आता है, उसके छिलके बहुत नरम होते हैं, हाथ से दबाओ तो भी मूंगफली की तरह फूट जाता है। और पहाड़ में फलने वाला जो अखरोट है, लोकल अखरोट, वो तो इतने मोटे छिलके होते हैं और इतने कठिन होते हैं, तो बहन जब टिक्का लगाने के बाद अखरोट देती है कि इसको फोड़ के खाओ, तो हम लोग अखरोट फोड़ने के लिए इतने परेशान होते थे, फूटता ही नहीं था, पत्थर के ऊपर रखा और दूसरा पत्थर मारा तो वो छिटक के चला जाए, कहां पहुंच जाए, फूटे ही नहीं, क्योंकि एक तो हाथ में तेल लगाया हुआ होता है, तेल भी उसमें होता है, तो वो इतना चिकना हो जाता है, मारे पत्थर छिटक के चला जाए, फिर खोज खाज कर लाया, फिर पत्थर के ऊपर रखा, दूसरा पत्थर मारा, फिर चिटक गया उधर। बड़ी मेहनत से उसको कदाचित फोड़ भी लो, तो लोकल अखरोट के अंदर जो खाने की चीज है ना, वो नहीं के बराबर ही होती है, और वह भी इतना उसमें फंसा हुआ होता है कि उसको निकालना बड़ा मुश्किल लगता है, तो ऐसे निकलता नहीं है। फिर एक तिनका ले लेते थे, सुई ले लेते थे, उसको निकाल के खाओ, हे भगवान, मुसीबत ही है। उस कठोर जो अखरोट है, उसका उससे भी ज्यादा कठोर तो यमराज का दिल है, छाती है भाई। और ऐसे यमराज के छाती पर, हे शिव, आपने ही लात मारी है और किसी ने लात नहीं मारा है। वक्षस्ताडनम अंतकस्य, अंतकः माने यमराज, अंतम करोति इति अंतकः, सभी के जीवन को अंत करने वाला होने से यमराज का नाम है अंतकः। उस अंतक के हृदय में लात मारी है भगवान शिव ने, बस, और किसी ने नहीं मारा आज तक इतिहास में। पुराण में प्रसंग आता है, मार्कंडेय ऋषि थे, मृकंडु के पुत्र मार्कंडेय, बचपन में बड़े खेलने में मस्त थे वो, जैसे हम लोग खेलते रहे उसी तरह वो भी खेलने में मस्त थे। एक बार नारद जी घूमते हुए गए और जाकर मार्कंडेय ऋषि को कहा, ए क्या करता है, खेलता रहेगा कि कुछ और करेगा? बोले, और क्या करना है, ये जीवन बचपन का जीवन खेलने के लिए तो है, खाने के लिए तो है, खूब खेलो और खूब खाओ, खूब खाओ और खूब खेलो। अरे शादी विवाह हो जाने के बाद न खाने को मिलेगा न खेलने को मिलेगा, है शादी के बाद तो खेलने को मिलेगा, रोने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। हम लोगों को थोड़ा हंसने की बात कर देता हूं भाई। कहते हैं एक माता पिता थे, उसकी एक लड़की थी। ये हंसने की बात है, जवान हो गई, माता पिता को अपनी कन्या प्रति चिंता हो गई कि इसके समय में शादी कर देना चाहिए। लड़की की मां ने कहा उसके पिता को कि अरे सुनो, हमारी बेटी अब जवान हो गई है, उसके हाथ पीले कर देना चाहिए भाई, समय में ही, जमाना खराब है, कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं, क्या हो जाए कब, इसलिए समय में ही शादी कर देनी चाहिए। बोले ठीक कहा तुमने, कर देनी चाहिए, इसके लिए कोई योग्य पति वर खोजना पड़ेगा भाई। बोले चलो खोजते हैं। उस कन्या के दोनों माता पिता कन्या के लिए वर खोजने के लिए गए। पहले एक गांव में गए, एक लड़का था उस गांव में, उसको देखा, पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य था। अब उसकी लड़की थोड़ी पढ़े लिखे की थी, कहा कि हमारी बेटी थोड़ी पढ़े लिखी है, ये तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख है, काम नहीं बनेगा, छोड़ दिया। दूसरे गांव गए, वहां एक लड़का मिला, उसको देखा, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तो था, उसके लड़के के बराबर पढ़ा लिखा तो था, लेकिन बहुत ही काला था, मेरे से भी गया काला, गुजरा काला था वो, बहुत काला था, ब्लैक था बिल्कुल। बोले ये तो ठीक नहीं, हमारी लड़की तो गोरी है, ऐसे काले से क्या ब्याह करना है, चलो छोड़ दो। फिर तीसरे गांव गए, वहां गए तो लड़का ठीक था, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी था, लेकिन बहुत गरीब था, तो ऐसे को लड़की देंगे तो पालेगा कैसे, ठीक नहीं है, उसको भी छोड़ा। फिर चौथा गांव चले गए, वहां एक लड़का मिला, बोले थोड़े बहुत सुबह शाम दाल रोटी खाने लायक का था, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, थोड़ा बहुत गोरा भी था, ठीक था। बोले ये तो सब कुछ ठीक है, हमारी लड़की के बराबर है, क्यों अपने लड़की के लिए इसको ओके कर दे। लड़की के बाप ने पूछा, किसे, लड़की की मां से पूछा, फाइनल कर दे। लड़की की मां ने कहा सब कुछ तो ठीक है, इसमें एक कमी है। आप क्या कमी है भाई? बोले जब हंसता है तो इसके दांत बाहर निकल आते हैं, है? और तो सब ठीक था, है? गोरा भी ठीक है, हमारी लड़की के बराबर है, पढ़ा लिखा भी है, हमारे लड़की के बराबर है, खाने पीने के लिए भी ठीक है, दो टाइम वो गुजारा लायक खा लेते हैं, दाल रोटी के बराबर, पढ़ा लिखा भी है, ठीक है, सब कुछ ठीक था। एक ही कमी है इसमें कि जब ये हंसता है तो दांत बाहर आ जाते हैं। लड़की के बाप ने कहा कि तब तो कोई समस्या नहीं, इतना ही ना है? बोले हां यही है, और सब ठीक है। बोले तब कोई समस्या नहीं, शादी पक्की, हमारी बेटी के साथ इसके साथ ही पक्की। बोले क्यों? बोले तुम्हारी बेटी के साथ शादी होने के बाद जीवन में इसको हंसने का मौका नहीं मिलेगा। शादी होने के बाद हंसने को मौका नहीं मिलेगा, और जब हंसने का मौका ही नहीं मिलेगा तो दांत बाहर आएंगे ही नहीं, तो कोई समस्या? चलो जीवन में आप हंसे नहीं हंसे, आज तो हंसे कम से कम है? उसने कहा कि जैसे तेरे से शादी करने को मेरे जीवन में कभी हंसने का मौका नहीं मिला, उसी तरह तुम्हारी बेटी से उसका शादी होगा, इस लड़के का, तुम्हारी बेटी इस लड़के को हंसने का मौका ही नहीं देगी, तब तो दांत बाहर आने का कोई समस्या ही नहीं है, तो शादी पक्की। जीवन तो इस तरह निकलता है भैया। तो मार्कंडेय ऋषि खेल रहे थे, उन्होंने कहा कि ये तो बचपन है, खाने पीने और खेलने का समय है, खेल रहे, शादी के बाद तो फिर खाना पीना खेलना हंसना सब बंद। नारद जी ने कहा कि अरे शादी की तू बात करता है, अब तेरी आयु केवल एक मुहूर्त की बची हुई है, मैं देख रहा हूं तेरे भाग्य की रेखाओं को, एक मुहूर्त के बाद तेरी आयु है ही नहीं, अब कहां शादी होगी और कहां तो संसार बसाएगा। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि क्यों, मेरी आयु बस एक ही मुहूर्त है? बोले हां, अब कोई है। तब क्या करें? बचने का और कोई उपाय है? नारद जी ने कहा कि दुनिया में बचने का उपाय नहीं है। अरे तब तो एक मुहूर्त के बाद मुझे मरना ही पड़ेगा। बोले हां पक्की बात, मरना पड़ेगा। बचने का कोई उपाय हो तो बोलो। तो नारद जी ने कहा कि एक उपाय है, वह है भगवान शिव के शरण में जा। महाराष्ट्र के एक बड़े भारी शिव भक्त विद्वान हुए, उन्होंने पशुपति अष्टक करके एक 8 श्लोकों का स्तोत्र लिखा है पशुपति के बारे में। काठमांडू में है ना पशुपति मंदिर, दर्शन करने जाने की इच्छा है? आओ, वहां अपना आश्रम है, तुम्हें कोई चिंता नहीं है रहने खाने की, हम घुमा देंगे, दर्शन करा देंगे, वहां आना तुम्हारा काम है, रहने खाने की सारी व्यवस्था आश्रम करेगा। पशुपतिनाथ, उसमें एक श्लोक लिखा है, न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरि बलम कुलम अवति कोऽपि न कालगतम वसम भजत रे मनुजा गिरिजा पतिम। हे मनुष्य, काल वसम गतम, जिस समय यमराज के वश में तुम पहुंच जाते हो, उस समय यमराज से बचाने वाला तुम्हारा कोई नहीं होगा। न जनको न जननी न च सोदरो, बाप तुम्हारी रक्षा जब तक यमराज नहीं आए तब तक तो वो खाने पीने पहनने की व्यवस्था करके करेगा, लेकिन जिस समय यमराज तुम्हारे सामने खड़ा होगा उस समय तुम्हारे पिता भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हें नहीं बचा सकता है। न जननी, तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी मां भी जिस समय यमराज सामने खड़ा होगा तुम्हारे लेने के लिए, तुम्हारी मां भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती है। न जनको जननी न च सोदरो सह उदर, एक ही पेट से पैदा हुआ भाई, सह उदर तुम्हारा भाई सहोदर भाई भी, और बाह्य जो शत्रु हैं उनसे रक्षा कर सकता है, मदद कर सकता है, लेकिन जब यह हमारा सामने खड़ा होगा तो उस समय तुम्हारा भाई भी तुम्हारी रक्षा कर नहीं सकता। नतनयो, तुम्हारे खुद अपने पैदा किए हुआ बेटा भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता है। नच भूरि बलम कुलम, खूब काजू किशमिश बादाम केसर दूध खा खा के दंडवत पेल पेल के शरीर में ताकत बनाओ, चाहे जितना भी। दारा सिंह भी गया, गया कि नहीं, गया कि नहीं दारा सिंह? क्या शरीर बनाया था उसने, क्या ताकत थी। भूरी बलम कुलम, अपने शरीर में चाहे जितना भी ताकत बना लो तुम, लेकिन जिस समय यह महाराज तुम्हारे सामने खड़ा होता है, तुम्हारे अपने शरीर की ताकत भी उस महाराज से तुमको बचाने में समर्थ नहीं है। फिर कौन बचाएगा? आवति को पिन काल गतम बसम, काल के बस में हो जाने के बाद उसके बस से छुटाना किसी की सामर्थ्यता में नहीं है। तब तो फिर मरना निश्चित है। बोले नहीं, एक व्यक्ति है वह तुम्हें बचा सकता है। कौन है भाई? गिरिजापति भजतरे मनुजा गिरिजापति। यदि जीवात्मा सबके आशा छोड़कर, सबका भरोसा छोड़कर एकमात्र पार्वती पति, भवानी पति, गिरिजापति भगवान शिव के अनन्य शरण में जाता है, तब यमराज से भी छुटा सकते हैं, बचा सकते हैं। वही बचा सकते हैं और नहीं बचा सकते। नारद जी ने जब ये बात कह दी, दो एक मुहूर्त में तुम्हारी आयु समाप्त है, यमराज आएगा और ले जाएगा, तुम्हारा खेल खत्म। बोले मुझे अभी जाना ही नहीं है। बोले तुम्हारे कहने से छोड़ेगा यमराज? यदि तुम्हें जाना नहीं है और रहने की इच्छा है, तो यमराज से पकड़कर रक्षा करने वाला, बचाने वाला दुनिया में एक ही है, वह है गिरिजापति। उसके शरण में जाओ, तब तो बच सकते हो, नहीं तो खत्म है तुम्हारी आयु। इतना तो नारद जी ने कह दिया और चल पड़े। मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि आसपास में कहीं शिव के शरण में जाने लायक कोई कहीं है, तो देखा एक मंदिर था और वहीं शिव मंदिर था। खेलना तुरंत बंद कर दिया मार्कंडेय ऋषि ने। नारद जी ने कहा है तो सही कहा होगा, छोड़ दिया खेलना। गए मंदिर के अंदर, गए आसन लगाकर अनन्य भाव से शिव के शरण में चले गए। तब तक तो यमराज आ गया, मुहूर्त समाप्त हो गया, प्रारब्ध तो समाप्त हो गया, आ गया यमराज। हे मार्कंडेय, तेरा समय समाप्त हो गया है, अब चलो हमारे साथ। बोले हम नहीं जाएंगे, हमको अभी और यहां रहना है, और खेलना है, बहुत काम करना है, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे से। बोले आज तक मेरे अनुशासन का किसी ने उल्लंघन करने का हिम्मत नहीं किया बेटा, और तुम्हारे कहने से हम छोड़ेंगे तुमको? हा, मंदिर के अंदर भी हमने नहीं छोड़ा है, घर के अंदर भी नहीं छोड़ा है, बाहर भी नहीं छोड़ा है, कहीं भी नहीं छोड़ा है। हम आवे और हमारे अनुशासन को उल्लंघन करे आज तक संभव नहीं हुआ है, चलो। बोले अभी तो हम भगवान शिव की पूजा करने बैठे हैं। बोले पूजा करने से यदि बच जाए तो सारी दुनिया बहाना बनाती रहेगी, हमारा अनुशासन ही खत्म हो जाएगा। इस बहाने से हम छोड़ने वाले नहीं भैया। तो जब यमराज ने अपने पास और अंकुश का प्रयोग करने की तैयारी किया, मार्कंडेय ऋषि ने शिवलिंग को अंकमाल किया, पकड़ लिया, महाराज हे शिवा ये देखो ना, ये जबरदस्ती कर रहा है, हम जाना नहीं चाहते हैं, हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, पूजा जप ध्यान करना चाहते हैं, और आपके आश्रय में हम रह रहे हैं, और आपके ही आगे आपके देखते देखते वो जबरदस्ती करे। और हमको तो नारद जी ने कहा था कि तुम ही रक्षा करोगे, इसलिए हमने खेलना बंद कर दिया और तुम्हारे शरण में आए थे, इसके बावजूद भी तुम रक्षा नहीं करोगे तो फिर कल से तुम्हारा भजन कौन करेगा, बोलो। जहां मार्कंडेय ऋषि ने ये भाव शिवजी के सामने व्यक्त की, वहीं भगवान शिव प्रकट हो गए और यमराज के छाती में एक लात मारी। यमराज तो वहीं मर गया, मर गया यमराज। वाह क्या काम बन गया, मार्कंडेय ऋषि बच गए, यमराज मर गया और मार्कंडेय ऋषि बच गए। इतने में सारे देवता आ गए और भगवान शिव से प्रार्थना की, महाराज ये तो गलत हुआ, महाराज यमः संयमतामहम। भगवान श्री कृष्ण आए और कहा, सारे जगत को अनुशासन में रखने वाला यही एक था, दुनिया तो आज तो इससे भी नहीं डरने वाले हैं, डरते नहीं है तो फिर तो कैसे अनुशासन में रहेगा जगत। इसी के चलते थोड़ा बहुत जगत अनुशासित हुआ हुआ है और ये भी अपने खत्म कर दिया तो डर का मृत्यु, फिर डर और भय तो खत्म हो गया, व्यक्ति इतना उद्दंड हो जाएंगे, जगत की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, महाराज इसको जीवन दान देना पड़ेगा। बोले एक ही शर्त पर मैं इसका जीवन दान दूंगा, जो मार्कंडेय ऋषि की तरह अनन्य भाव से मेरे शरण में आएगा उस पर ये जबरदस्ती न करें, उस पर ये जबरदस्ती न करें। जो मेरे शरण में ना आकर अन्य के शरण में घूमते हो तो उसको भले कर ले, मेरे भक्तों पर ये अति न करे, ये शर्त मंजूर है तो इसको मैं जीवन दान देता हूं। बोले महाराज हम वचन देते हैं कि ये उद्दंडता नहीं करेगा, आप जीवन दान दे दो। तो भगवान शिव ने मृत्यु को यमराज को जीवन दान दिया और कहा, खबरदार आज के बाद तुम उद्दंड होकर मेरे भक्त पर तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। उस दिन से भगवान का नाम हुआ मृत्युंजय। मृत्यु को जीता जिनने, इसलिए उसका नाम पड़ा मृत्युंजय। उस प्रसंग को शंकराचार्य जी स्मरण कर रहे हैं, महाराज ऐसा कठोर हृदय वाला यमराज और उस पर आपने लात मारी, कहां आपका चरण कितना कोमल और कहां यमराज का हृदय कठोर, आपके चरण में कितना कष्ट हुआ होगा, कितना दुख हुआ होगा। मैं देख रहा हूं जूता नहीं पहना था आपने उस समय। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, मैं गप नहीं कर रहा हूं, यही शब्द प्रयोग किया है। जूता पहना होता तो भी कुछ आराम मिलता, जूता भी नहीं पहना था, नंगे पांव से अपने यमराज के छाती में प्रहार किया था, क्या कष्ट हुआ होगा महाराज। मुझे लगता है कि ऐसा काम करने वाले आपको एक जूते की आवश्यकता है। और वो जूता मेरे पास है, शंकराचार्य मोची हैं वो, मोची हैं, जूता वाले हैं ना उसले। उन्होंने कहा वो जूता मेरे पास है, मैंने बढ़िया जूता बना के रखा है आपके लिए।
बक्षस्ताड़न मंतकस्य कठिन,
अंतकस्य कठिन बक्ष, यमराज के जो कठोर हृदय में आपने जो लात मारी है। यमराज मर तो गया लेकिन उससे आपको कितना कष्ट हुआ है। यमराज मरने का दुख हमको नहीं, आपके चरण में जो दुख हुआ है ना उसकी हमको चिंता है। दूसरी बार हमने देखा है अपस्मार संमर्दनम, एक राक्षस हुआ है उसका नाम है अपस्मार। दक्षिणामूर्ति भगवान शिव ने, उन्होंने अपने पांव के नीचे उसको दबा रखा है आज भी, हाँ छोड़ा नहीं है। और अपस्मार भी बड़ा कठोर राक्षस था, उनको दबा रखा है उन्होंने, वो भी पांव से ही दबाया है। महाराज नंगे पांव से दबाया है, ये अपस्मार इतना कठोर राक्षस और नंगे पांव से उसको आप दबा रहे हो, इसीलिए एक जूते की आवश्यकता तो है आपको। हम देख रहे हैं कि एक जूते की आवश्यकता है। तीसरी बात, जिस समय रावण ने कैलाश को उठाया और रावण ने यह सोचा कि ये दिन दिन रोज रोज लंका से आओ, कैलाश आओ, पूजा करो, फिर लंका जाओ, ये झंझट कौन करेगा। बलात् कैलासेपि त्वद अध वसतौ विक्रमयता। रावण ने कहा कि मेरे ये 20 हाथ में इतनी ताकत है कि कैलाश पर्वत को मैं पूरा उखाड़कर ले जाके लंका में रख लूंगा, तो रोज ये आने जाने के झंझट से तो मुक्ति हो जाएगी ना। हम लोग भी यही करते हैं, नजदीक के मंदिर में जाना थोड़ा समस्या होता है तो घर में मंदिर बना लेते हैं, तो घर में मंदिर बनाओ तो जब उठो तब पूजा करो, मंदिर में बाहर के मंदिर में तो पुजारी के अनुसार अनुशासन से समय में जाना पड़ेगा। घर का मंदिर हो तो जब 12 बजे उठे तो वही ब्रह्म मुहूर्त हो गया ना, अपना घर का मंदिर है, चाहे 12 बजे पूजा करो चाहे 1 बजे पूजा करो, कौन बोलने वाला है। बाहर के सार्वजनिक मंदिर में तो बहुत टोक टाक करेंगे। रावण ने भी यही सोचा कि कौन झंझट करे, रोज कैलाश आओ पूजा करो जाओ, पूरा कैलाश को ही उठा के ले जाता हूं लंका में रख लेता हूं, तो आराम से अपने घर की देवता जब चाहो तो पूजा करो। बलात् कैलासेपि तद अधि वसतौ, नित्य निरंतर निवास करने वाले उस कैलाश पर्वत को ही विक्रमयति, रावण ने उखाड़ने की कोशिश की और उखाड़ ही लिया था, उड़ाया, तब तक तो पर्वत हिलने लगा। ये क्या बात है, ये कभी भी ना हिलने वाला पर्वत, महाप्रलय में भी ना हिलने वाला पर्वत, भूचाल में भी ना हिलने वाला पर्वत, एक आज अचानक क्यों हिल रहा है। भगवान शिव ने इस ध्यान करके देखा तो रावण ने तो उखाड़ चुका था, उठा चुका था। भगवान शिव ने अपने पांव निकाली आसन में से और उस पर्वत के चोटी पर जोर से दबा दिया। पुष्पदंताचार्य जी ने तो जोर भी नहीं कहा है, वाला सब प्यंगुष्ठ धीरे से रख दिया है उस पर्वत के चोटी में अंगूठा, उतनी से रावण ऐसा दब गया,
जिस पर्वत को उठाने के बाद जो गड्ढा हुआ था उसी गड्ढे में रावण पड़ गया और ऊपर पर्वत आ गया, ले दब गया रावण। नारद जी घूमते हुए गए, देखा रावण तो दबा हुआ है पर्वत से। ऐ रावण ये क्या हुआ, ये पर्वत के नीचे तू कैसे आ गया? रावण ने कहा कि महाराज ये अपनी मूर्खता से आ गया। बोले कैसे, तू तो बड़ा विद्वान था, ये मूर्खता कैसे कर ली? बोले हमने ऐसे ऐसा विचार किया तो पर्वत को ले जाऊं लंका में, उखाड़ तो लिया था लेकिन पता नहीं क्या हुआ मैं इसी गड्ढे में पड़ गया, इस पर्वत अब मेरे ऊपर पड़ गया है, अब यहां से मैं निकल नहीं पा रहा। कोई उपाय है तो बताइए महाराज। साधनोति परकार्यम इति साधु, आप तो साधु है, दूसरे के उपकार करते चलते रहते हो, इस संकट से बचने का कोई उपाय आपको मालूम है तो बता दो महाराज। बोले एक उपाय है। क्या है जल्दी बताओ। बोले भगवान शिव जो है संगीत और नृत्य के बहुत प्रिय है, उनको कोई स्वर सहित संगीत गा लेता है तो उनसे नाचे बिना रहा नहीं जाता है। तुम बढ़िया श्लोकों से, बढ़िया छंदों से, बढ़िया स्वर से तुम गाओ, ये भगवान ने दबा रखा है पहाड़, इसलिए तू दबा हुआ है। और तू बढ़िया गाने लग जाएगा, उनकी स्तुति करेगा तो वो नाचने लग जाएंगे, वो इस बात को भूल जाएंगे कि रावण को दबाने के लिए पर्वत को दबाया है। सच महाराज? बोले हां। तो कविता की रचना तो मैं कर सकता हूं, गा भी सकता हूं, बजाने के लिए मेरे पास वीणा तो है ही नहीं, आप अपना वीणा दे दिए, खबरदार हमारी वीणा किसी को छूने नहीं देते हम। बोले ठीक है, छूने ना दो, आप यहीं बैठकर वीणा बजाओ, मैं गाऊंगा। बोले हमको फुर्सत नहीं है, हमें उसकी फुर्सत नहीं है, फिर हम कैसे गा तो लेंगे तो बजाना भी पड़ेगा ना। बोले एक काम कर, तेरे 10 सिर है ना, 10 में से एक निकाल ले गर्दन से बाहर, और 20 हाथ है, एक हाथ निकाल ले और ये सिर में हाथ जोड़ दे तो वीणा हो गया कि नहीं? वीणा कैसा होता है, नीचे बड़ा गोला होता है और जो उंगलियां हैं वो वीणा के बटन है ऊपर, और तुम नस निकाल ले हाथ में से, जो बड़े बड़े नस हैं वो तार बना ले, बस फेरी बाकी 19 हाथ तो रहेंगे ना तेरे, 9 मुख भी रहेंगे, 19 हाथ भी रहेंगे, उन 9 मुखों से बढ़िया कविता बना के गाओ, 20 हाथों से बढ़िया वीणा बजाओ, 2 हाथों से ताली बजाओ और 17 हाथों से बिना बजाओ, वाह क्या कहना, और जरा गाओ तो सही भगवान शिव की स्तुति, फिर देख कमाल क्या होता है। रावण ने कहा सच? बोले सच। नारद जी ने कहा बिल्कुल पक्की बात है, हम तो जा रहे हैं, अब तो करना हो तो कर। नारद जी चले गए, उपाय बता दिया, रावण ने वही किया। हाँ, एक सिर निकाल ली, एक बाजू निकाल लिया, जोड़ लिया और नसें निकाल ली और वीणा बना ली और वीणा बजाना शुरू किया, ताली बजाना शुरू किया। जटा टवी गल जल प्रबल पालक, जटा कटाह संभ्रम भ्रमण निलिंप निर्जरी, बिलोल बीची वल्लरी विराजमान मूर्ध्वनि, धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्र शेखरे रति प्रति क्षण मम। आहा, इस तरह उसने बढ़िया सुंदर श्लोकों को गाता रहा और बजाता रहा। भगवान शिव के कान में जब ये संगीत पड़ी तो नटराज तो थे ही, उनसे रहा नहीं गया, उतर गए आसन से, नाचना शुरू कर दिया। जैसे शिव जी ने उसको दबाने का संकल्प छोड़ा और नाचने लग गए, पहाड़ तो हल्का हो गया। रावण के लिए वो पहाड़ क्या था, वो तो शिव के संकल्प से भारी हुआ था, नहीं तो रावण के लिए वो पहाड़ कुछ भी नहीं था। जब उनका संकल्प गया और नाचने लग गए तो भूल गए कि मैंने रावण के लिए पर्वत को दबा रखा है। नाचने लगे, नाचते नाचते रावण बाहर निकल आ गया, हाथ जोड़कर गाना बंद कर दिया। शिव जी ने देखा कि ये किसने गाया था, किसने बजाया था, सामने रावण खड़ा है। महाराज मैंने ही गाया था, मैंने ही बजाया था, और ये पहाड़ किसने वो उखाड़ा था, बोले वो भी मैंने ही किया था। अरे रे रे रे, रे। चलो तेरा कल्याण हो जाए, जा अब आगे उद्दंडता नहीं करना। बोले नहीं करेंगे महाराज, बच गए, ये तो नारद जी की कृपा से बच गए। भगवान शिव को कितना कष्ट हुआ होगा उस पर्वत को दबाए रखने में। शंकराचार्य जी उधर भी संकेत कर रहे हैं,
बक्षस्ताडनमंतकस्य कठिना पस्मारसमर्दनम भूभृत पर्यटनम।
अब आप पहाड़ों की चोटियों में नंगे पांव घूमते रहते हो, कभी इस पहाड़ कभी उस पहाड़, और बर्फीले पहाड़ में भी चलना पड़ता है, कटीले पहाड़ में भी चलना पड़ता है, पत्थरों में भी चलना पड़ता है। भूभृत, भू माने पृथ्वी, भूभृत माने पर्वत। भूभृत पर्यटनम नमत सुरसिरा कोटीर संघर्षणम। और हमने देखा है स्वर्ग के देवता लोग भी, बड़े बड़े देवता लोग भी बढ़िया बढ़िया रत्न से जटित मुकुट पहनकर आते हैं और आपके चरण में सिर रगड़ते हैं, लेकिन वो लोग गलती क्या करते हैं, मुकुट उतार के रखकर खाली सिर से आपके चरण में सिर रखकर सिर रगड़ते, तब तो आपको चरण में कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन वो अपने मुकुट के सहित रगड़ते हैं, उनके हृदय में जरा भी दया नहीं है कि इस मुकुट के कारण रगड़ने से उनके चरण में कितना कष्ट होगा। उनके हृदय में जरा भी दया नहीं होती।
बक्षस्ताडनमंत कस्य कठिना,
और आप मना भी नहीं कर सकते हो, आप मना भी नहीं कर सकते। हम तो नेपाल में रहते हैं, प्राय करके ठंडियों में वहीं रहते हैं। अब काठमांडू में माइनस में जाता है ठंडी जनवरी में, दिसंबर जनवरी बहुत ठंडा तो होता ही है जनवरी में, तो भक्त लोग आते हैं तो आप लोगों को तो पता ही है, कोई अति श्रद्धालु भक्त लोग आते हैं, कहते महाराज हम आपके चरण को धो के पान करेंगे और चरण की पूजा करेंगे। बोले चरण धोएंगे फिर उसकी पूजा करेंगे। अब ठंडी में चरण खोलकर दे तो न दे तो उनकी श्रद्धा, और दे तो अपने लिए पांव ठंडी से मरना पड़ेगा, क्या करे बोलो, नहीं भी नहीं कर सकते। हां करते हैं तो मुसीबत अपनी ही है, अब मांगते हैं तो देना ही पड़ता है, चरण दो पानी डालते हैं रगड़ते हैं, तब तक तो पांव इतना ठंडा हो जाता है, हैं? फिर फटाफट, अरे जल्दी करो कहना पड़ता है, तो फटाफट फिर तबलिया से पूछेंगे, मोजा लगा देंगे, तब तक तो ठंडा हो चुका होता है भाई। इसी तरह भगवान शिव, हम जीव का तो यह हाल है, तो भगवान शिव का क्या हाल होगा। स्वर्ग से देवता लोग रोज प्रणाम करने के लिए आते हैं। कहते हैं महाराज कैलाश में खड़े होकर, महाराज आप चरण दीजिए, हम प्रणाम करेंगे आपके चरण में ही प्रणाम करेंगे। हमारे एक भक्त ने कहा, किसी ने कहा कि संतों के चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, दूर से ही प्रणाम करो, संतों को चरण स्पर्श न करो। बोले क्यों? बोले हम जीव हैं, अशुद्ध रहते हैं, बहुत पापों से भरा हुआ है हमारा जीवन, तो यदि हम संतों के चरण का स्पर्श करेंगे तो फिर पावर हमारा पाप चरण से महात्मा में चला जाएगा। है? क्या जाएगा? हमारा पाप हमारे स्पर्श करते ही है कहां जाएगा? महात्मा में चला जाएगा। इसलिए भक्तों का पाप महात्मा में संक्रमण न करे, इसके लिए चरण स्पर्श न करो। अच्छी बात है। बोले दूसरे महात्मा ने ये कहा, क्या कहा? कि कोई चरण स्पर्श करेगा तो संतों का पुण्य भक्तों में चला जाएगा। ये भी तो गड़बड़ है कि नहीं, बोलो। संत सुबह 4 बजे उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर जप करता है, ध्यान करता है, साधना करता है, आत्मचिंतन करता है, ने? और उसके द्वारा प्राप्त जो पुण्य है, एक भक्त 8 बजे तक सो गया, 9 बजे नहा धोकर आया, छू लिया और सब लेके चला गया, हैं? गड़बड़ हो गया कि नहीं, बोलो। संतों की सारा पुण्य लेके गया। इसीलिए चरण छूना नहीं देना चाहिए या चरण नहीं छूना चाहिए। हे भगवान, ऐसे ऐसे व्याख्या करते हैं। हम कहते हैं कि तुम इतने कमजोर संत हो, तुम इतनी कमजोर संत क्यों हो कि भक्त तुम्हारे चरण छू ले और भक्त का पूरा पाप तुम्हारे में आ जाए, तुम इतनी कमजोर संत हो? हैं? कमजोर संत इसकी व्याख्या करेगा वो। और तुम संत हो तो कंजूस हो, तुमको पुण्य किस लिए चाहिए, बोलो? तुमने मां छोड़ी, बाप छोड़े, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, धन छोड़ा, दौलत छोड़ा, पुण्य किस लिए चाहिए तुम्हें, बोलो? और महात्मा होने के बाद भी मेरा पुण्य मुझे चाहिए, भक्तों को नहीं देंगे, और भक्त से दक्षिणा लेंगे और उनको पुण्य नहीं देंगे? कंजूस, कंजूस कहीं का है? भक्त दक्षिणा देगा तो लेगा कि नहीं, बोलो? दक्षिणा लेने है और पुण्य नहीं देना है उसको, ये तो बदमाशी है, सारा सर बदमाशी है। तुम्हें पुण्य की क्या जरूरत है? तुम तो ज्ञान मार्ग में चले हो, ज्ञान मार्ग में पुण्य की आवश्यकता नहीं है। तुमको मर के फिर स्वर्ग जाना है क्या? जो पुण्य चाहिए, बोलो। चित्त शुद्धि तो तुमने जो भजन भजन की है उससे चित्त शुद्ध हो गया, चित्त शुद्धि के बाद जो पुण्य है वो भक्तों को जाता है, तो जाए ना, तो बेचारा वो दक्षिणा तो दे रहा है, नहीं तो क्यों आएगा तुम्हारे पास, क्यों प्रणाम करेगा, क्यों दर्शन करेगा, बोल। पुण्य जाएगा करके डरने वाला भी कमजोर साधु, पाप आएगा करके डरने वाला भी कमजोर साधु। तुम ज्ञान निष्ठा में स्थिर हो जाओ और पुण्य और पाप का क्या हिसाब करते हो तुम भाई? किसी को चरण छू करके भी मत कहो, किसी को चरण न छू करके भी निषेध न करो। तुम राग द्वेष से रहित हो जाओ भैया, तुम अपने स्वरूप में अवस्थित रहो, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे काम में न आने वाला पुण्य शास्त्र ने कहा कि नहीं? पुण्य भी मोक्ष के लिए प्रतिबंधक है, யதா பஸ்ய பஸ்யதி ருக்மவர்ணம் கர்த்தாரமீசம் புருஷம் பிரம்மயோனிம் ததா வித்வான் புண்ய பாபே விதூய நிரஞ்சனம் பரமசாமியம் உபேதி. வித்வான் தோ புண்ய ஓர் பாப் தோனோ சே அசங்க ஹோகர் பரம் நிரஞ்சன சாம்ய பிரம்ம மே ஸ்தீத் ஹோதா ஹே. தும் புண்ய கோ கட்டா கர்கே ரக்கோ ஜப் தும்கோ பிரம்மி நிஷ்டா ஆ ஜாயே தோ வோ புண்ய தோ ஐசே ஹி பேகார் சலே ஜாயேகா. அப் பேகார் ஜானே கே ஜகா பக்தோ கோ தோ சார் பக்தோ கோ மில்தா ஹே தோ மில்னே தோ நா பாயி, கியா ஹர்ஜா ஹே. கல் தும் ஃபிர் பஜன் கர் லோ, ஆஜ கா புண்ய கோ ஏக் பக்த லேகே ஜாதா ஹே, ஜானே தோ, கல் ஃபிர் பஜன் கர் லோ. கல் கா பக்த புண்ய ஃபிர் தூசரா பக்த லே ஜாதா ஹே, லே ஜானே தோ, ஃபிர் பஜன் கரோ. புண்ணிய லை ஜாத்தே ஹே பக்த, உஸ்ஸே கியா தும்கோ கமி படேகி புண்ணிய கி? கியா ஏக் தின் காலி பஜன் கர்னா ஹே தும்னே? ஜீவன் பர் பஜன் கர்னா ஹே, சப்கோ சோட் தியா ஹே. கர்த்தே ஜாவோ, புண்ணிய கா கஜானா பனாவோ. லை ஜாத்தே ஹே பக்த, லை ஜாயே. சரண் ஸ்பர்ஷ கர்க்கே சரண் தும்ஹாரா புண்ணிய லை ஜாத்தே தோ லை ஜானே தோ பாயி, மத் ரோகோ. ஓர் தும்ஹாரே பாஸ் புண்ணிய ஹோ, ஃபிர் பக்தோ கா பாப் ஆ ஜாயேகா, யே க்யூ டர்தே ஹோ பாயி? அக்னி யே டர்தி ஹே கி பூஸ் கே மஹீனே மே, ஜனவரி கே மஹீனே மே டண்டி ஆ ஜாயேகா. அக்னி டரேகி போலோ? அக்னி டரேகி? ஜனவரி கே மஹீனே மே டண்டி ஆ ஜாயேகா. அரே பாய், ஜனவரி கே மஹீனே மே டண்டி ஆ தோ ஆவே, அக்னி கோ க்யா பரக் படனே வாலா ஹே? சங்கராச்சாரிய ஜி அப்னே பாவ கோ யஹாம் யே வியக்த கர்த்தே. வக்ஷஸ்தாடனமந்த கஸ்ய கடினா அபஸ்மாரா சம்மர்தனம் போவ்ரித் பரியட்டனம் நமத் சுரரிஷிரா கோட்டீர சங்கர்ஷணம். சுர சிர கோட்டீர, தேவதாவோ நே ஜோ முகுட் பஹன் ரக்கா ஹே மணியோ கா, உன் முகுட் கே சஹித் ஆப்கே சரண மே ஜப் பிரணாம் கர்த்தே ஹே, தோ வோ முகுட் சே ஆப்கே சரண மே கர்ஷண் ஹோதா ஹே, தோ கித்னா சோட் லக்தா ஹோகா ஆப்கோ? தோ ஃபிர் க்யா கரே மஹாராஜ்? கர்மேதம், ஆப்கா யே ஜோ கர்ம ஹே படா கடின் கர்ம ஹே. கர்மேதம் மிருதுலஸ்ய தாவக பதத்வந்தஸ்ய, ஓர் ஆப்கே ஜோ சரண ஹே தோ சரண் ஃபிர் இத்னி கோமல் ஹே, இத்னி கோமல் ஹே கி பார்வதி கே ஹ்ருதய மே ரஹதே ஹே. ஓர் யதி ஆப்கே சரண் கடோர் ஹோதே ஃபிர் பார்வதி கே ஹ்ருதய மே கைசே ரஹதே போலோ? இஸ்கா மத்லப் யே பக்கி ஹே கி ஆப்கே சரண் பஹுத் கோமல் ஹே. ஐசா நீ கி யே காம் கர்த்தே கர்த்தே ஆப்கா பாவ் பீ கடோர் ஹோ கயா ஹோ. கடோர் ஹோதா தோ பார்வதி அப்னே ஹ்ருதய மே ரக்தி நீ, நிகால் கே ஃபேங்க் தேதி. பஹுத் நரம் ஹே, பஹுத் சாஃப்ட் ஹே, இசிலியே தோ அப்னே ஹ்ருதய மே ரக்தி ஹே. முஜே சிந்தா ஹே மஹாராஜ், ஆப்கோ கித்னா கஷ்ட ஹோகா. போலே க்யா சாஹதே ஹோ தும் போலோ.
மச்சே தோ மணி பாதுகா விஹரணம்,
மைனே ஏக் படியா ஜூத்தா தயார் கர்கே ரக்கா ஹே, படியா ஜூத்தா தயார் கர்கே ரக்கா ஹே, ஆப்கே சரண் கே நாப் கா ஹி ஹே.
மச்சேதோ மணி பாதுகா,
மேரா சித்த ரூபீ ரத்னோ கா ஜோ பாதுகா ஹே சரண் கா, சரண் பாதுகா, மேரா மன் ரூபீ ஆப்கே பாதுகா ஹே. மணி பாதுகா, மன ரூபீ சித்த ரூபீ மணி பாதுகா ஹே மேரே பாஸ். உஸ் பாதுகா கோ ஆப் தாரண் கரியே, அப்னே சரண் மே ரக்கியே பாய்.
விஹரணம் சம்போ சதாங்கீக்ரூ,
அரே தூ குஸ் தின் தும் அப்னே சித்த ரூபீ சரண் முஜே தேதேகா, फिर कुछ दिन के बाद तुम मांग के ले जाएगा तो? बोले नहीं नहीं महाराज, एक बार आप पहन लो, हम कभी भी वापस लेने वाले नहीं है। आपको दे दिया सो दे दिया बस। और विहरणम करो, मेरे चित्तरूपी पादुका को आप अपने चरण में धारण करके, चाहे यमराज को लात मारो, चाहे अपस्मार को दबाओ, चाहे रावण के पर्वत दबाओ, चाहे पहाड़ों की चोटी में, चाहे जंगलों में, कंदराओं में, जहां घूमना हो घूमो, आपके चरण सुरक्षित रहेंगे। हाँ, और मेरा मन चित्त रूपी पादुका घिसने वाला भी नहीं है। हाँ, इतना मणि है ना, हीरा बहुत कठिन होता है, लेकिन यह है कि कठिन होगा तो फिर मैं कैसे पहनूंगा? बोले आपके चरण के लिए बहुत नरम है, उन लोगों के लिए कठिन है। देख लो, भक्तों का हृदय परमात्मा के लिए सॉफ्ट होना चाहिए और संसारियों के लिए कठोर होना चाहिए। संसार के प्रति कठोर, मैं भगवान के भजन में लगूंगा तो फिर संसार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, ये सोचने लग जाओगे तो फिर तुम संसार के लिए नरम हो गए, तुम्हारा हृदय फिर भगवान के लिए कठोर हो जाएगा। तो भगवान के लिए नरम हो, संसार के लिए कठोर, यानी जूते का नियम क्या होना चाहिए, बाहर से कठोर हो अंदर से नरम हो। बस जूता यदि अंदर से नरम होगा तो पांव में घर्षण नहीं होगा, चुभेगा नहीं, पांव को काटेगा नहीं, और बाहर से कठोर होगा तो घिसेगा नहीं। हाँ, ये शंकराचार्य जी ने, मैंने ऐसी जूता तैयार किया है, आपके चरण के लिए बहुत नरम है, संसार के लिए कठोर है। तो आप महाराज जूता पहन लीजिए। और आगे क्या कहते हैं,
वक्षस्ताड़न संकय विचलितो वैवस्वतो निर्जरा कोटिरोज्ज्वल रत्न दीप कलिका नीराजनम कुर्बते दृष्ट्वा मुक्ति बधुस्तनोति निवृता श्लेषं भवानी पते यच्चेतस्तव पाद पद्म भजनम तस्येह किं दुर्लभम।
जिसका चित्त आपके चरण कमल की पादुका बन गया है, उसके लिए फिर संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है, सब चीज सुलभ हो जाएगा।
वक्षस्ताड़न संकय विचलितो वैवस्वतो,
उस व्यक्ति को देखकर यमराज भी डरता है। किस व्यक्ति को देखकर? जिसका चित्त रूपी पादुका भगवान शिव के चरण में फिट हो गया, जिसके चित्त रूपी हृदय रूपी पादुका जूता भगवान शिव के चरणों में फिट हो गया है, ऐसे व्यक्ति को देखकर यमराज भी डरता है। क्यों डरता है? अरे रे रे, ये तो भगवान का भक्त है, और यदि मैंने कोई खुदा खास्ता इसके छेड़खानी की तो एक लात भगवान मारेंगे। मार्कंडेय ऋषि के समय में तो बिना जूता का मारा था, अब तो इन्होंने जूता भी पहन लिया है, है? मार्कंडेय ऋषि के समय में तो बिना जूता के लात से मारा था, अब तो इन्होंने जूता भी पहन लिया है। कौन से जूता? इस व्यक्ति के चित्त को ही भगवान ने जूता बना लिया है, अब तो जूता पहनकर लात मारेंगे। बोलो, तो यमराज की तो सांस उड़ जाएगी अपने आप, इसीलिए
वक्षस्ताडन संकया विचलिता।
शिवजी मारेंगे लात करके, पहले से ही वो दूर भाग जाएगा।
वक्षस्ताडन संकया विचलितो, कौन? वैवस्वता,
सूर्य का पुत्र। यमराज सूर्य का पुत्र है वो,
विवस्वान सूर्य, तस्य अपत्यम वैवस्वता,
सूर्य का पुत्र यमराज।
वैवस्वतो और निर्जरा,
निर्जरा माने कभी बूढ़ा नहीं होने वाले,
कभी बूढ़े न होने वाले, निर्जरा
कौन?
देवता।
देवता कभी बूढ़े नहीं होते। वो
वो क्या करते हैं?
कोटि रोज्ज्वल रत्न दीप कलिका नीराजनम कुर्वते।
ऐसे भगवान के परम भक्तों को चुनुने अपने चित्तरूपी पादुका भगवान को अर्पण किया, भगवान के चरण में लगा दिए है, और जिसके चित्तरूपी पादुका को भगवान ने अपने जूता बना लिया है, ऐसे भक्तों को तो देवता लोग भी अपने मुकुट की चमकते हुए मणियों से आरती उतारते हैं।
कौन?
देवता लोग
किसकी आरती उतारते हैं?
भगवान के भक्तों की।
आहा, क्या बढ़िया भक्त है। देखो,
हमको तो भगवान का दर्शन भी नहीं हुआ है,
और ये इतना महान व्यक्ति है कि जिसके चरण, जिसके हृदय को ही भगवान ने अपने चरण में धारण कर ली, जूते के रूप में धारण कर ली है। क्या धन्य हो गया ये जीवन। देवता लोग उस ज्ञानी पुरुष के भी भक्तों के अपने मुकुटों से, मुकुट में लगे हुए रत्नों से उन भक्तों की आरती उतारते हैं।
निर्जरा कोटि रोज्जल रत्न दीप कलिका नीराजनम कुर्वते। दृष्ट्वा मुक्ति बधूस्तनोति।
इन सबको देखकर,
किसको देखकर?
उस व्यक्ति को देखकर यमराज डरता रहता है,
उन व्यक्तियों को देखकर देवता लोग भी अपने श्री मुकुट के रत्नों से आरती उतारते रहते हैं। ऐसे परम भक्तों को देखकर,
दृष्ट्वा मुक्ति बधुस्तनोति निवृता शेषम भवानी पते।
हे भवानी पति, पार्वती पते, हे शिव,
मुक्ति बधु, मुक्ति रूपी स्त्री,
मुक्ति रूपी स्त्री भी ऐसे भक्तों को देखकर बरबस ऐसे भक्तों से आलिंगन करने के लिए उद्भूत, अपने आप ही प्रवृत्त होती है।
दृष्ट्वा मुक्ति बधु स्तनोति निवृत अश्लेषम,
अंकमाल करने के लिए आती है अपने आप ही।
उस भक्त को मुक्ति खोजना नहीं पड़ता है,
मुक्ति के लिए फिर और कोई प्रयत्न करना नहीं पड़ेगा।
किस भक्त को?
जिसने अपने चित्त रूपी जूते को भगवान शिव के चरण में फिट कर दिया है, ऐसे को देखकर मुक्ति बधु अपने आप ही उसको वरण करने के लिए दौड़े दौड़े आती है। जंगल में रहे, चाहे बंबई में रहे, चाहे हरिद्वार रहे, चाहे दिल्ली रहे, चाहे कलकत्ते रहे, चाहे यहां रहे, चाहे इलाहाबाद रहे, आबाद रहे, आजाद रहे, है?
मुक्ति बधु पीछे पीछे दौड़ती है भाई उसके लिए। तो
वो तो जीते जी वरण कर लेती है मुक्ति वधु, मरने की बात की तो बात छोड़ दो,
जीते जी वरण करती है।
भक्षस्ताड़न संकया विचलित हो,
क्योंकि वो भी समझती है ये भगवान का भक्त है इसलिए कभी मरेगा नहीं, तो कभी हमको पति वियोग होने ही नहीं पड़ेगा भाई, ऐसे ऐसे शादी करने मिल जाए तो भक्ति मुक्ति वधु खुश हो जाएगी, है होगी कि नहीं बोलो ना।
भक्षस्ताड़नमंतकस्य विचलित संकया विचलितो वैवस्वतो निर्जरा कोटीरोज्ज्वल रत्न दीप कलिका नीरा जनम कुर्वते दृष्ट्वा मुक्ति वधुस्तनोति निवृता श्लेषं भवानी पते ये यच्चेतस्तव पाद पद्म भजनम।
जिसका चित्त आपके चरणों के आश्रय ले लिया है, पाद पद्म भजनम, भजनम माने भज सेवा, जिसका चित्त परमात्मा के चरण पादुका बनकर सेवा कर रही हो, तस्सेव किम दुर्लभम, ऐसे व्यक्ति के लिए संसार में दुर्लभ कुछ भी नहीं, क्योंकि मोक्ष वधु तो उसके सहचरी अपने आप आलिंगन कर रही है, तो मोक्ष वधु उसको आलिंगन कर रही है तो संसार का भोग की कमी होगी उसको, ऐश्वर्य की कमी होगी। शिव जिसके हृदय में अपने चरण रखे हुए हैं उसके लिए क्या किस चीज की कमी होगी, सर्वस्व उसको प्राप्त होगा, भोग मोक्ष सब कुछ प्राप्त होगा। किम दुर्लभ, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि तुम्हारे पास कोई कमी है, तुम्हारी कमजोरी से तुम गरीब और दरिद्र दीन दुखी हो रहे हो। तुम्हारी कमजोरी क्या है, वो चित्त को तुम भगवान शिव के चरण पादुका नहीं बना पा रहे हो बस। हां देख लो, शिवानंद लहरी के कुछ श्लोक बहुत रत्न हैं। एक श्लोक हमने पहले भी कहा था, बड़े प्रिय श्लोक है। दूसरा श्लोक ये आ रहा है, ये श्लोक बहुत उत्तम श्लोक है, ठीक से समझना बहुत जरूरी है इस श्लोक का। और यदि इस श्लोक का भाव यदि किसी ने समझ लिया, उसका जीवन परम आनंद और मंगलमय हो जाएगा, फिर उसके लिए संसार में कोई विषाद की घड़ी उपस्थित होगा ही नहीं।
क्रीडार्थम सृजति प्रपंचमखिलम क्रीडा मृगास्ते जना यत्कर्माचरितम मया च भवतो प्रीत्यै भवेत्येव तत् शम्भो स्वस्य कुतूहलस्य करणम् मच्चेष्टितम् निश्चितम् तस्मान् मामकरक्षणम् पशुपते कर्तव्यमेव त्वया।
इस श्लोक की व्याख्या कल ही करेंगे भाई, क्योंकि अब व्याख्या जाएगा आधा घंटा जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।